कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे
सब लोग बोलिए
हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे
बोलिए बोलिए
हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे
जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे
जय राधे
जय राधे जय श्री राधे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय
प्रभुपदा
प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री श्री गंगा माई की जमुना माई की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की श्री हिमालय महामहाम की जय। सब लोग बोलेंगे मेरे बाद में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय।
कृष्णाय वासुदेवाय।
देवकी नंदनाय च।
देवकी नंदनाय च।
नंदगोपकुमाराय।
नंदगोपकुमाराय।
गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः।
गोविंदाय नमो नमः।
गोविंदाय नमो नमः।
गोविंदाय नमो नमः।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे।
कृष्णा हरे हरे।
हरे रामा हरे रामा।
हरे रामा हरे रामा।
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के सोमवार के दिन 19 सितंबर को हम मिल रहे हैं उत्तरकाशी में। बहुत ही पवित्र था पवित्र स्थान है जहाँ पर आप सब लोग रहते हो। इसको जो काशी प्रदेश है जहाँ पर शंकर जी महाराज ने अपना राज्य बसाया था। आपको पता है कथा क्या है वो? जब भी दक्ष राजा ने पार्वती को जन्म दिया तो पार्वती का शंकर पर बहुत प्रेम था और दक्ष राजा को 11 कन्याएं थी और जैसे अरुंधति जैसे बहुत सारे, तो 10 कन्याओं का 10 ऋषियों के साथ विवाह हो गया। लेकिन जो 11वीं कन्या थी पार्वती, वो किसी ऋषि के साथ में विवाह करने को तैयार नहीं थी। उनका हृदय जो था वो शंकर भगवान के पास ऑलरेडी उन्होंने समर्पित किया था, तपस्या भी किया था उनको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। लेकिन दक्ष राजा को शंकर के ऊपर इतना सम्मान नहीं था, ये तो फकीर आदमी है, ये तो भजन करता है, इसके बाद कोई राज्य नहीं है, कोई ऐश्वर्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, ये तो वैराग्य आदमी, तो वो तैयार नहीं थे उसको करने के लिए। तो अपने होने वाली पत्नी जो है पार्वती, उसका सम्मान रखने के लिए फिर शिव जी ने अपना ऐश्वर्य जो है प्रकट किया और काशी में राज्य स्थापन कर दिया। ऐसा कहते हैं कि जब शिवजी और पार्वती का विवाह हुआ तो उन्होंने यज्ञ किया बहुत बड़ा, और इस यज्ञ में उन्होंने सब ऋषि मुनियों को बुलाया। तो यज्ञ समाप्ति हुई, सभी ऋषि मुनि दक्षिणा देने के लिए आए, तो एक एक ऋषि ने दक्षिणा मांगा कि आपका कैलाश मुझे दे। ऐसा भी कथा है कि उन्होंने एक सुंदर महल बनाया, बहुत सुंदर, मतलब जो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है, जो इंद्र के पास भी नहीं है, इतना सुंदर ऐश्वर्य संपन्न महल बनाया कि ताकि लगे दक्ष राजा को कि हमारा जमाई भी कुछ है। और यज्ञ किया, उसके बाद में एक ब्राह्मण ने बोला कि ये जो महल बनाया है वो दान में दे दो। तो उन्होंने उसी को दान में दिया और फिर कैलाश पर्वत पे वापस जाके तपस्या करने लगे। तो हमारे शिवजी महाराज बहुत बड़े वैरागी हैं, बहुत बड़े वैष्णव भी हैं। तो ये काशी जो है ये उनका राज्य है और उत्तर काशी यानी इसको उत्तर की दिशा में जो काशी इसको मानते हैं, उत्तर दिशा की काशी, इसलिए इसको उत्तर काशी कहते हैं। और यहाँ पर गंगा नदी का अनेक स्वरूप है। यहाँ पर अलकनंदा है, भागीरथी है, मंदाकिनी है, गणेश गंगा है और बहुत सारी गंगाएं हैं, बहुत सारी अलग अलग दिशा से आती है वो। यहाँ पर आपके आपके पास में गणेश प्रयाग है ना, एक गणेश गंगा ऐसे आती है, यहाँ से भागीरथी गंगा आती है तो थोड़ा आगे ब्रिज के पास में उसका मिलन होता है, उसको प्रयाग कहते हैं। जहाँ दो नदियाँ मिलती है वो बहुत पवित्र स्थान होता है। जैसे इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है, बहुत शक्तिशाली जगह है, वहाँ पर स्नान करने से बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्ति होती है, पाप का नाश होता है। आप लोगों ने ये भी कहानी सुनी होगी कि महाबली का नाम सुना है आपने, महाबली प्रहलाद के ग्रैंड सन थे वो, प्रहलाद का नाम सुना होगा ना, प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र महाबली। तो महाबली ने सभी देवताओं का राज्य छीन लिया था, तो फिर सभी देवता लोग अपनी माता के पास गए रोते रोते, माता हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है अभी, हम लोग तो गुफा में छुप के रह रहे हैं, भेष बदल के रह रहे हैं, कुछ करो। तो माता ने अपने पति को विनती किया, कश्यप मुनि बहुत दिन तक वो तपस्या में थे, तो तपस्या में ध्यान में से जग गए, तो बोले मेरे हमारे सारे पुत्र देवता लोग तो अभी भिक्षुक बन गए, सब छुप छुप के जी रहे हैं। तो उन्होंने फिर ध्यान किया, तो ये कश्यप मुनि और अदिति दोनों ने बहुत तपस्या किया था और भगवान ने उनको 3 बार पुत्र बनने का वादा किया था उनसे। तो पहले जन्म में सुतपा और पृष्णिगर्भ के नाम से जब उन थे, तभी पृष्णिगर्भ के रूप में वो उन्होंने जन्म लिया था। पृष्णि और सुतपा ये थे पहले, वो सुतपा प्रभु जी थे और पृष्णि माता थी, उनके गर्भ में पृष्णिगर्भ के रूप में भगवान प्रकट हुए। और दूसरी बार जब वो अदिति और कश्यप मुनि बनकर आए, तो उनके गर्भ में वामन देव के रूप में प्रकट हुए। वामन देव का नाम सुना है आपने, भगवान के अवतार है वो, विष्णु के अवतार है वामन देव। तो वामन देव का जन्म होते ही उन्होंने उनका ब्राह्मण संस्कार किया, उपनयन संस्कार किया, सभी देवता प्रकट हो गए, उनको भेंट दिया उन्होंने, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने छतरी दिया, किसी ने रुद्राक्ष की माला दिया, किसी ने मृगाजिन दिया बैठने के लिए ध्यान करने के लिए, किसी ने जनीव दिया, बहुत सारे ब्राह्मण के साहित्य उनको दिया। इतना तेज था उनका, स्वर्ण रंग की कांति थी उनकी। और फिर उस समय महाबली जो है वो सभी देवताओं को परास्त करने के बाद में, उनका सब राज्य छीन लेने के बाद में, इंद्रपद प्राप्त करने के लिए 100 यज्ञ कर रहा था। सब तो छीन लिया लेकिन अभी तक मान्यता नहीं मिली ना, अब मैंने ज़बरदस्ती छीन लिया आपका लेकिन आपने मुझे अभी तक सलाम नहीं किया। तो इंद्रपद यानी पोजिशन, सब लोग सलाम करेंगे, दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे कि हमारे राजा हैं। तो वो प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य ने उनको बताया कि आपको 100 यज्ञ करना पड़ेगा। तो 99 पूरे हो गए, मतलब क्या हुआ उसका, 99 में 100 पूरे हो गए कि सारे देवता लोगों को फिर दंडवत करना पड़ेगा बलि महाराज को, तभी वो गए भगवान के पास। तो भगवान ने फिर अवतार लिया और 100वें यज्ञ में वामन देव वहाँ पर दक्षिणा लेने के लिए पहुँच गए। जैसे वामन देव पहुँच गए तो खड़े हो गए, बलि महाराज भी खड़े हो गए, इतना तेज उनका, जैसे समझो आपने दिवाली के समय पे 1000 दीपक लगा के रखे रात को, तो चमचमाएंगे ना वो, लेकिन सूरज आएगा तो दिखेंगे क्या वो, सूरज आएगा तो दिखेंगे भी नहीं, किधर है दीपक समझ में नहीं आया, कंदिल कहाँ लगाया, लाइट लगाया समझ में नहीं आ रहा है। उस तरह से जैसे ही वामन देव ने प्रवेश किया उधर यज्ञशाला में, तो सब लोग निस्तेज हो गए एकदम, सबका तेज छिन गया, इतने तेजस्वी थे वो। तो बलि महाराज ऐसे खड़े हो गए हाथ जोड़कर, बोले महाराज आप इतने तेजस्वी ब्राह्मण हो, आपका हमारे यज्ञशाला में आना कितनी बड़ी भाग्य की बात है हमारी, मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूँ कि आपने, आप जैसा तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ में यहाँ की शोभा बढ़ाने के लिए आया है। फिर यज्ञ समाप्त हुआ और फिर दक्षिणा देने के लिए जब आए, तो बोलते महाराज आप दक्षिणा मांग लो, आप बड़े तेजस्वी हो, बड़े विद्वान लगते हो, मेरा भाग्य है, क्या दूँ आपको मैं, सप्तद्वीप में से एक द्वीप दे दूँ क्या, सप्तद्वीप मतलब पृथ्वी जिससे बनी हुई है, 7 आइलैंड है ना पृथ्वी पर, तो एक द्वीप दे दूँ क्या आपको, कोई मेरा लोक दे दूँ क्या, देवताओं का क्या चाहिए बताओ आप। तो क्या मांगा उन्होंने, उन्होंने बोला मुझे 3 पग भूमि चाहिए बस। तो बलि महाराज बोलते कह रहे लगते तो बड़े बुद्धिमान हो लेकिन मांगने में आपको शायद बुद्धि नहीं है, कि आप पता नहीं किससे मांग रहे हो आप, मैं आपको 3 लोक दे सकता हूँ, आप 3 पग भूमि मांग रहे हो, इतनी अकल की बात नहीं है ये, आप थोड़ा बुद्धि कम रखते हो, मैं समझा था कि आप बड़े बुद्धिमान हो। तो वामन देव कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसके पास में आज जो भी कुछ है उसमें संतुष्ट नहीं है, तो उसको 3 लोक भी मिल जाएंगे ना तो संतुष्ट नहीं होगा वो। आपके पास जो भी कुछ है आज, आज की तारीख में, कल नहीं, आज, आज की तारीख में आपके पास जो भी कुछ है उसमें संतुष्ट होना चाहिए हमको, तो कल भी संतुष्ट होने की संभावना है। अगर आज हमारे पास जो है वो संतुष्ट नहीं है, आमतौर पर लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, हमको कुछ और चाहिए होता है, तो बलि महाराज को वामन देव कहते हैं कि तीनों लोक प्राप्त होने पर भी संतुष्ट आदमी नहीं हो सकता है, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ तो आप हो, आपके पास तीनों लोगों का साम्राज्य ऑलरेडी है, फिर भी आप 100 यज्ञ और कर रहे हो, आपको और कुछ चाहिए, उसके आगे का चाहिए आपको। इसलिए मुझे यज्ञ करने के लिए 3 पग भूमि की जरूरत है, ज़्यादा प्रलोभन मत दो, जितना चाहिए उतना ही लूँगा। उतने में गुरु जी आते हैं, उनके कान में बोलते हैं, अरे इनको मत देना, ये तो भगवान है, इतने से रूप में, छोटे से रूप में बालक बनकर आए हैं, जैसे ही आप हाँ बोलोगे ना, मंत्र बोल के स्वाहा करोगे, तो ये ऐसा रूप धारण करेंगे कि 2 पग में तुम्हारा सब कुछ भूमि छीन लेंगे, तुम्हारे पास 3रा पग रखने के लिए जगह भी नहीं होगी। इसको मत दो, अभी भी है, अभी भी तुमने ओम नहीं बोला है, मत मना कर दो इनको। उस समय बलि महाराज सोचते हैं, अगर मेरे गुरु जी बता रहे हैं कि ये भगवान है तो भगवान है, और अगर भगवान मेरे दरवाजे पे भिक्षुक बनकर आए हैं मेरे यज्ञ को संपन्न करने के लिए, तो इससे बड़े भाग्य की बात क्या हो सकती है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे दरवाजे पे भगवान आएंगे, विष्णु आएंगे, और गुरु जी कह रहे हैं विष्णु है, तो बोला कोई बात नहीं, अगर विष्णु जी मेरे दरवाजे में भिक्षुक बनकर आए हैं तो मेरा भाग्य है, मैं जरूर दूंगा उनको। तो गुरु की अवज्ञा किया उन्होंने, और ओम बोलकर फिर मंत्र छोड़ के पानी छोड़ दिया, और फिर वामन देव ने कहा कि अभी ले लूँ, 3 कदम ले लूँ क्या? हाँ बोला उन्होंने, और ऐसा रूप धारण किया, ऐसा रूप धारण किया, ऐसा रूप धारण किया। बलि महाराज देखते रह गए, उनके पैरों के अंदर पर्वत थे, वो है ना ब्लड वेसल्स, वो सब नदियाँ दिखाई पड़ रही थी, उनके हाथ में क्षत्रिय, उनके पेट में वैश्य, उनके शीश पे और कंधे पे ब्राह्मण, पूरा ब्रह्मांड जो है, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, सब उनके शरीर में समाया था। जितने भी जीव हैं, जितने भी योनि हैं, देवता है, राक्षस है, मनुष्य है, जानवर है, पंछी है, सब, सांप है, कीटक है, सब उनके अंदर दिखाई पड़ा उनको। फिर उन्होंने बोला ले लो पदम, पदम उठा लूँ। तो उन्होंने एक कदम उठाया तो सारी पृथ्वी और पाताल लोक है ना, अतल वितल सुतल पाताल रसातल एंड कुम तलातल, 6 नीचे के लोग और 1 पृथ्वी लोग नाप लिया उसने। 2रा पग जब उठाया तो पूरे स्वर्ग लोग नाप लिए, मतलब जितना बलि महाराज के पास प्रॉपर्टी था वो सारा प्रॉपर्टी नाप लिया उसने। अभी बलि महाराज एक्चुअली भिक्षुक बन गए, 0, कुछ नहीं उसके पास, आगे देने के लिए कुछ नहीं, ना पिछले ब्राह्मण को देने के लिए, आगे ब्राह्मण के लिए कुछ नहीं, अभी तीनों जितना भी था उनका प्रॉपर्टी वो सब नाप लिया उन्होंने। ये कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 2रा कदम जब उठाया तो वो ब्रह्मांड के कवरिंग को काट दिया उन्होंने। ब्रह्मांड कैसा होता है ना, अंडे की तरह होता है, सब गोल होता है, उसके अंदर विष्णु रहते हैं, उसके अंदर पेट से ब्रह्मा निकलते हैं, फिर 14 लोक है उसमें, 7 स्वर्ग लोक, 1 पृथ्वी लोक, 6 पाताल लोक, ऐसे ही सिचुएशन है, और उसके बाहर एक आवरण होता है, और ये सारे आवरण जो है मिलकर ब्रह्मांड होता है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान ने निर्माण किए, एक ही नहीं तो एक यूनिट है, ऐसे अनंत है, अनंत। तो जब उसका छेद कर दिया उन्होंने ना, तो महाविष्णु के शरीर से निकला हुआ जो जल है कारण सागर का, वो उस होल से अंदर आया, और वो जल क्या है बताइए? वो जल आपकी गंगा है। और ब्रह्मा लोक के पास पहचाना भगवान का पाव पहुंच गया ऊपर, ऐसा भगवान ऊपर उठा रहे ना, तो ब्रह्मा लोक में पाव पहुंच गया उनका, तो ब्रह्मा तुरंत आए ब्रह्मा जी, और तुरंत उन्होंने अभिषेक किया पैर का भगवान का, क्योंकि इतना तेज जो है ना उनके ब्रह्मालोक में आया कि ब्रह्मा जी का तेज भी निस्तेज हो गया। तो भाग के आए, वो कौन है ये देख रहे, तो भगवान ने अपना कदम उठाया है, तो उस कदम का उन्होंने अभिषेक किया और प्रार्थना किया। शिव जी ने वो जो अभिषेक किया हुआ जल है ना, जो पांव धोया, उसको कमंडल में इकट्ठा किया, और वो जो जल आया था वो गंगा जी के रूप में प्रकट हो गया और वो नीचे आ गया। और आप जानते हैं इसके पीछे भी लंबी कहानी है, सगर राजा के 60,000 पुत्रों ने ऋषि का अपराध किया था, तो वो ऋषि को गुस्सा आया, उसने शाप दे दिया, भस्म कर दिया सबको, राख बना दिया। तो सगर राजा के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ, बहुत लोगों ने तपस्या किया, उनका जीवन भी समाप्त हो गया, लेकिन तपस्या सफल नहीं हुई। उनको बताया गया था अगर आप दिव्य लोक से, वैकुंठ से अगर गंगा जी को लेकर आएंगे और इनके राख के ऊपर भेजेंगे तो ये उनका उद्धार हो सकता है, नहीं तो फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो सभी राजा जन्म लिया, जन्मभर तपस्या किया, फिर भी यशस्वी नहीं हुए। फिर उसके बाद में भागीरथ, इसलिए कहते हैं भागीरथ प्रयत्न, यानी कि भागीरथ ने ऐसा तपस्या किया कि गंगा जी प्रकट प्रसन्न हो गई। उसने कहा क्या बात है, तो उन्होंने कहा मेरे 60,000 पूर्वज जो है ना वो राख बनकर पड़े हुए हैं, उनको उद्धार करना है। तो बोले मैं आऊँगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है मेरा, मैं जब आऊँगी मेरे लोक से तो इतनी स्पीड से आऊँगी, इतनी गति से आऊँगी कि तुम्हारी पृथ्वी जो है ना वो गेंद की तरह ऐसे बह जाएगी पूरा। मैंने जोर से एक बाल्टी पानी फेंका इसके ऊपर, तो ये कहाँ से कहाँ बह जाएगा ना ऐसे। तो मेरा स्पीड कम करने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो मैं आऊँगी तुम्हारे 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, लेकिन जिसपे 60,000 तुम्हारे पड़े हुए हैं राग बनकर, वो पृथ्वी में भाग के ले जाऊंगी, तो कहीं रह जाओगे तुम, तो क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति है पूरे पूरे निर्माण में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही व्यक्ति है जो मेरे स्पीड को कंट्रोल कर सकता है, वो है शंकर भगवान। तो फिर एक व्यक्ति को नंबर वन को प्रसन्न कर दिया, उनको स्टैंड बाय खड़ा कर दिया, तपस्या में वापस बैठ गए, बहुत घनघोर तपस्या किया। फिर शिवजी महाराज को प्रसन्न किया, उन्होंने कहा क्या बात है, क्या वर चाहिए। उन्होंने कहा गंगा जी को लाना है, मेरे पूर्वजों का उद्धार करना है, तो आपको जरा उनको अपने में लेकर उनको गति कम करके भेजना है ताकि वो बह सके, हमको नहीं बहा सके। तो शिवजी ने फिर उनको जटा ऐसा फैलाया और फिर गंगा जी आई बड़े गति से। तो शिवजी ने गंगा जी का जो अहंकार था कि मेरे पास इतनी गति है, इतनी स्पीड है मेरे पास, तो उसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया, मतलब बांध दिया अपनी जटा में। और उसको भी बड़ी खुशी हुई कि शंकर जी के जटा में अगर संग मिल रहा है तो कितनी बड़ी बात है। फिर उन्होंने उनको कम गति से ऐसे, इसलिए वो है ना वो ऐसे देखो, ऐसे गंगा जी आती है, जैसे गति से आती है वैसे नहीं, अभी आपको दिख रहा है इतनी फास्ट है ये कुछ भी नहीं है उसका स्पीड, ये तो दबाया हुआ है पूरा, ओरिजिनल स्पीड जो है उनका बहुत ज़बरदस्त है। तो फिर वो गंगा जी को जब ही शंकर जी ने छोड़ा, तो ऐसा कहते हैं कि गंगा जी को अभी भी गति का बहुत गर्व था। तो रास्ते में उन्होंने क्या किया, जानू मुनि का आश्रम था, जानू मुनि थे बड़े मुनि, जानू मुनि बंगाल के पास उनका आश्रम था, उधर उन्होंने आश्रम को पूरा भा ले लिया, पूरा झोपड़ी ओड़ी पूरी उड़ा ली उसकी। वो गायत्री करने के लिए बैठे थे, वो कमंडल भी बहा दिया उसका। तो जानी मुनि तो बड़े पावरफुल ऋषि थे, उन्होंने देखा गंगा जी को इतना घमंड है अपनी स्पीड का, तो पूरी गंगा को पी लिया उन्होंने, हाँ घोए घोट में पी लिया पूरा। गंगा जी गायब हो गई, तो भगीरथ जो है वो आगे जा रहे हैं और गंगा जी पीछे आ रही है, तो भैया पीछे गंगा जी नहीं है, किधर गया। तो उनको समझ में आता है कि ऋषि बैठे हुए हैं, वहाँ तक तो गंगा आ चुकी थी। उन्होंने फिर वापस तपस्या किया और ऋषि को प्रसन्न किया, बताया कि मैंने ऐसे ऐसे के लिए गंगा जी को लाया था, गंगा जी ने माफ़ कर देना, उनको छोड़ देना। तो जानू मुनि ने अपने कान से गंगा जी को छोड़ा, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, जाह्नवी। जाह्नवी यानी जानू मुनि की बेटी के रूप में, मतलब पुत्री बन गई गंगा जी ना, दोबारा जन्म दिया उनको और फिर छोड़ा। फिर भागीरथ जो है वो रथ लेकर आगे 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 गए जहाँ पर वो राख पड़ी थी ऋषि के आश्रम में, उस वहाँ से गुजरे, पीछे से गंगा जी आई और राख पे ही चली गई। तो सारे 60,000 जो उनके पूर्वज थे उनका उद्धार हो गया। अभी जब गंगा जी, सबसे पहले गंगा जी जब जाने का बात हुआ था तो गंगा जी तैयार नहीं थे, बोले मैं नहीं आती हूँ, अरे पृथ्वी में कौन आएगा, सब लोग यहाँ पापी लोग हैं, सब पाप करते हैं, जन्म मृत्यु यहाँ पर सब कुछ है, बीमारी है, बुढ़ापा है, सब लोग यहाँ पर तड़पते हैं, सब राक्षस भी यहाँ पर रहते हैं, सब लोग पाप करते हैं यहाँ पर, भगवान को भूल कर रहते हैं, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पर। तो विष्णु ने उनको वरदान दिया, आप चिंता मत करना, आपके अंदर लोग स्नान करेंगे और पाप छोड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर साधु भी स्नान करेंगे, ऋषि भी स्नान करेंगे, मुनि भी स्नान करेंगे, और जब वो स्नान करेंगे तो जितना पाप तुम्हारे अंदर आया हुआ है वो सब नष्ट हो जाएगा, और तुमको साधुओं का संग मिलेगा, वो भी आपके अंदर स्नान करेंगे, तो आपको भी पवित्रता प्राप्त होगी। और एक वरदान दिया उनको कि जहाँ जहाँ तुम भोगी, जहाँ जहाँ जाओगी वो सारे तीर्थ बनेंगे, जिधर भी आप जाओगे सब किनारे जो है वो तीर्थ स्थान बनेंगे, जो भी वहाँ पर आएगा पाप से मुक्त हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा उनको मतलब उत्साह दिया उन्होंने। तो फिर भगवान की इच्छा से, भगवान का वरदान प्राप्त करके गंगा जी आई, उन्होंने सगर राजा के पुत्रों को उद्धार किया और वो अभी भी बह रही है। सबसे पहले कहाँ आई वो, सबसे पहले वो ब्रह्मा लोक में आई, फिर सारे स्वर्ग लोकों में जाते हुए, उसको कहते हैं आकाश गंगा, सबसे पहले आई ना वो आकाश गंगा, फिर वहाँ से वो पृथ्वी पर आई तो क्या बनी, गंगा। फिर नीचे गई, क्या बनी, पाताल गंगा। और वहाँ से जाके वो फिर वापस वैकुंठ गई हुई है, पूरे तीनों लोकों का उद्धार करते हुए। तो आप सब लोग गंगा जी के किनारे रहते हो, गंगा को विष्णु पदगामिनी कहा गया है। विष्णु पदगामिनी यानी विष्णु के जो बड़ा है ना अंगूठा, अंगूठा है ना पायर का, उसमें से निकली है वो। जो वहाँ वामन देव का जो स्पर्श हुआ ना, तो वो अंगूठे का स्पर्श होकर वहाँ छेद हुआ, तो वहाँ से प्रकट हुई है। और वैकुंठ में भी भगवान के अंगूठे से निकली हुई है वो, तो उसको विष्णु पदगामिनी कहा गया है। तो विष्णु पदगामिनी होने की वजह से सदैव विष्णु के चरणों में समर्पित रहती है और पूरे विश्व का उद्धार करती है। ऐसा सुंदर वातावरण है। देखो इसका जो जल है ना, इसका जो आवाज़ आ रहा है ना, आवाज़, इस पर भी आप ध्यान करेंगे ना तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इतनी पावर है इसके अंदर। और इसका स्पर्श होने पर भी सारे पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं। एक बार गरुड़ जी सांप को पकड़ कर उड़ रहे थे खाने के लिए, तो थोड़ा गंगा जी के ऊपर से उड़ रहे थे, तो सांप की जो पूँछ है ना वो गंगा जी को स्पर्श हो गई, तो सांप जो है वो चतुर्भुज विष्णु दूत बन गया, पूरे पीताम्बर और मुकुट के साथ, चार भुजा में शंकर चक्र पद्म गदा, विष्णु का दूत का शरीर प्राप्त हो गया उसे। तो देखा तेरे हाथ में तो सांप था, अभी तो ये तो विष्णु दूत बन गया। तो उसको पीठ पर रख के वैकुंठ ले गए वो, मतलब उसके सारों पर मुक्ति हो गई तुरंत, गंगा जी का स्पर्श होते। इतनी शक्ति है उसके अंदर। रोज अगर कोई गंगा जल सेवन करता है, सुबह उठकर अगर एक जल नदी से लेकर पूरा पीता है रोज, कहते हैं उसको कोई रोग नहीं होता है, हर प्रकार का रोग नष्ट हो सकता है। तो ये शक्ति है हाँ, और ये हमारी माँ है, ये हमको सबको सहारा देती है, सबको आश्रय देती है, जहाँ जहाँ बहती है सब लोगों को शांति आनंद पाप मुक्ति प्रदान करती है। ये बहुत पवित्र क्षेत्र है, यहाँ से मतलब ऊपर से जब निकलती है सारा क्षेत्र पवित्र है। जितनी उसकी ब्रांचेस है, जितनी शाखा मिलके आती है, जहाँ जहाँ प्रयाग होता है, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, जितने भी प्रयाग होते हैं सब जगह लोगों का उद्धार करते 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 जाते हैं। आप लोग बड़े भाग्यवान हो, आपको यहाँ पर सेवा करने का मौका मिला है। कितने लोगों का जन्म यहाँ पर हुआ है, सबका ही हुआ है। यहाँ पर जो जन्म प्राप्त करता है वो वापस दुनिया में नहीं आता है, ये वरदान है। गंगा जी जहाँ बहती है सबको पवित्र करती है। लेकिन एक ही उसमें समझने वाली बात है कि अगर जन्म यहाँ पर हुआ है तो भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन जन्म होने के बाद में भगवान का भजन नहीं किया तो फिर वो नंबर कैंसिल हो सकता है ना। नंबर तो लगा था है ना, वीज़ा तो मिला था, लेकिन टिकट निकाला नहीं तो क्या करेंगे, जानते हैं ना वीज़ा, अमेरिका में जाना हो तो वीज़ा निकालना पड़ता है। वीज़ा मिल जाता है लेकिन वीज़ा के बाद में टिकट निकालना पड़ता है, टिकट निकाल के हवाई जहाज पकड़ना पड़ता है, फिर आप अमेरिका पहुँचेंगे। खाली वीज़ा होने से अमेरिका पहुँचते नहीं कोई। तो इस तरह से आप सबको वीज़ा तो मिल गया है, अभी टिकट आपको निकालना है। टिकट निकालने का मतलब क्या है, भगवान का नाम का जप करना, चार नियमों का पालन करना, भगवान के द्वारा जो बताया है उसको सुनना, श्रवण करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना और जीवन भर भगवान के अंदर लीन रहना, समर्पण, अपने आप को समर्पण कर देना भगवान के लिए। ये जब हम करते हैं तो वो जो वीज़ा भाग्य प्राप्त हुआ है ना, उसके वजह से आप तुरंत भगवत धाम चले जाएंगे इस जीवन के अंत में। दोबारा यहाँ पर आकर कष्ट भोगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा जन्म का तकलीफ, फिर बाद में बुढ़ापा, फिर बीमारी हाँ, फिर मृत्यु का कष्ट जो है, फिर गर्मी है, तूफान है, आंधी है, फिर बादल फटता है, कभी आंधी आती है, कभी क्या कहते हैं उसको, पत्थर गिर जाता है पर्वत से, ये सब कष्ट नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर तड़प रहे हैं सब लोग, जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा है ना, वे बूढ़े बाबा आए थे ना, दिखता नहीं आँख में से, सबको होने वाला है वो। हमारे गुरु जी थे प्रभुपाद जी, वो कहते थे, बहुत बूढ़े थे वो, उनके शिष्य लोग सेवा करते थे, ऐसे उठको उठा देते, इधर रखते थे, तो बहुत बूढ़े हो गए थे वो। तो शिष्यों को बोलते थे, आप लोग जवान हो लेकिन ये मत समझना कि ऐसा आपको नहीं होगा। अभी आप जवान हो लेकिन हट्टे कट्टे हो, चंगा हो और मुझे सेवा कर रहे हो, लेकिन एक दिन आप भी बूढ़े बूढ़ा होंगे, ऐसा मत समझना कि आपको ऐसा नहीं होगा, आपको भी एक दिन ऐसा आएगा जीवन में। सबको एक दिन बूढ़ा होकर बीमार होकर जाना है, लेकिन बूढ़ा होकर बीमार होकर जाने के बाद कहाँ जाना है ये हमको तय करना है। अभी अभी तय करेंगे तो जीवन हमारा धन्य है, मनुष्य जीवन बहुत धन्य है, मनुष्य जीवन में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बाकी कुत्ता बिल्ली के जीवन भगवान नहीं प्राप्त हो सकता है। ये हमने इतना बात आपको समझाया, भगवान की कथा बताया, वामन देव की बताया, शंकर जी की बताया, ये कुत्ता बिल्ली को बैठ कर सुना सकते हैं क्या? कुत्ता बिल्ली बैठे हैं तो कब खाना देखेंगे, वही देखेंगे। पंछी को बैठ कर सुनाएंगे तो पंछी सुनेंगे क्या? लेकिन मनुष्य लोग हैं तो समझ सकते हैं। ये आपका जो यंत्र है मनुष्य शरीर का, ये यंत्र में वो फैसिलिटी बिठा दिया है भगवान ने कि उनको समझ सकते हैं हम लोग। श्रेष्ठ प्राप्ति करने के लिए मनुष्य का जीवन है, जानवरों की तरह भोग लेने के लिए नहीं है। तो उसी भावना से हम लोग सब लोग भाग्यवान लोग हैं, हम लोग को गुरु जी की पहचान हुई, गुरु जी को मिले हम लोग, उपदेश प्राप्त किया उनका, भगवान का नाम प्राप्त हुआ और जीवन धन्य हो गया। नहीं तो क्या है, अभी डॉक्टर बनने के बाद लोग शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं, क्या व्यभिचार करते हैं, मांस खाते हैं। कितने डॉक्टर लोग अभी ऐसे ही, सब लोग ऐसे ही डॉक्टर बनने तक अच्छे रहते हैं, बनने के बाद में एक पैसा हाथ में आया फिर शराब दारू व्यभिचार नशा सब करते हैं। क्या फ़ायदा है सब कुछ करके? हाँ, विद्या प्राप्त करके फ़ायदा क्या है? अगर वो गलत रास्ते पर डालती है तो क्या फ़ायदा है? लेकिन जब हम भक्त लोगों के संग में आए, उनका संगति प्राप्त किया, तो हमको गुरु जी ने ऐसा प्रेरणा दिया कि अपना जो व्यवसाय है, मेडिकल व्यवसाय जो है, वो करते समय भी लोगों को भगवान का नाम देना चाहिए। अभी आप दवा दे रहे हैं सबको तो शरीर का रोग को ठीक करें ना। अभी आप दांत का ड्रिलिंग करते हो, दांत की सेवा करते हो, लेकिन दांत की सेवा करने के बाद वो मांस खाएगा तो? हाँ, समझो कोई चोर आया आपके पास, सब चोरी करता है बहुत, वो चोरी करते करते गिर गया, पाँव टूट गया उसका, एडमिट हो गया, पर आपने उसको प्लास्टर किया, पाँव ठीक किया, पाँव ठीक हो गया तो वापस चोरी करने चालू किया, पता है ना ऐसे। समझो कोई टेररिस्ट आतंकवादी यहाँ पर भागते भागते आके इधर इंजोर हो गया, समझो आपके पास आया, आपने उसको एडमिट किया, उसको ठीक किया, बहुत दिन तक रहा इधर वो, और जैसे ठीक हो गया वापस आतंकवाद करने के चला गया। तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने उसको ज्ञान नहीं दिया, समझाया नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आपकी सेवा के वजह से वो जाकर दोबारा पाप करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, है ना। अभी तो पाँव टूटा है तो कम से कम आराम से बैठा है, पाप भी नहीं कर रहे हैं, सो रहा है खाली, लेकिन पाँव ठीक कर दिया आपने, वापस भागेगा और चोरी करेगा, तो वो सारा पाप जो है वो डॉक्टर को, नर्स को और बाकी लोगों को लगता है जो उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं ये आतंकवादी क्या है। तो शास्त्र में लिखा है कि डॉक्टर लोग होते हैं ना, डॉक्टर नर्स लोग होते हैं, मेडिकल लोग होते हैं ना, वो बहुत डेंजरस कंडीशन में होते हैं, क्योंकि उनके पास में इलाज करने के लिए कौन आ रहा है क्या मालूम, कौन व्यभिचारी आया है, कौन मांसाहारी आया है, कौन खून करने वाला आया है, कोई गुनेगार आया है, कोई नशा करने वाला आया है, कोई पापी आया है, किसको मालूम? आपके पास आएगा, आप पूछते हो क्या आपने क्या क्या पाप किया है, ऐसा पूछते हो क्या? आप खाली पूछते हो दांत में का दर्द है, कौन सा दांत दुखता है, आप बोले ये साइड दुखता है, वो बोलेगा आँख में तकलीफ है, कौन सा आँख में तकलीफ है, तो बोले ये आँख में तकलीफ। आप ऐसा पूछते हो क्या 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 पाप किया आपने, कितनी बार दारू पिया आपने, ऐसा पूछते हो क्या? नहीं पूछते। तो उस पाप से अगर आपको बचना है तो हमको मेडिकल केयर के साथ में स्पिरिचुअल केयर करना चाहिए, यही एक उपाय है। आपने अगर इलाज किया उसका और साथ साथ में उसको ज्ञान देना चाहिए, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल केयर, भगवान के विषय में ज्ञान देना चाहिए। और आपका काम बताना है, वो नहीं सुनेगा तो उसकी मर्जी, लेकिन आपने बताया, कम से कम उसको भगवान का नाम दिया, समझाया उसको ये करना नहीं चाहिए, ऐसा है जीवन में, ये पाप नहीं होना चाहिए, शुद्ध जीवन जीना चाहिए, तो हमारा कम से कम जो पाप हमको लगने वाला है उससे हम फ्री हो जाते हैं। इसी बात पर भक्ति वेदांत अस्पताल बनाया गया है। हमारे मेडिकल में चार पांच चीज़ें होती है, एक होता है मेडिकल केयर, है ना, चाहे वो दांतों का हो, आँखों का हो, या शरीर का हो और किडनी का हो, कुछ भी हो, वो होता है मेडिकल केयर। दूसरा होता है नर्सिंग केयर, मतलब वो आईवी लगाएगी, फिर पट्टी लगाएगी, फिर उसको संभालेगी, उसको क्या क्या करेगी। फिर होता है सोशल केयर, यानी कि उसको पैसा चाहिए, कोई गरीब आदमी है उसको डोनेशन चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए उसको, कुछ क्रच चाहिए उसको, कुछ पैसा नहीं उसके पास तो उसको वो चाहिए। और लास्ट है स्पिरिचुअल केयर। जब तक स्पिरिचुअल केयर आप नहीं देते हो, आपकी सेवा अधूरी है, क्योंकि आपका ज्ञान नहीं दिया तो वो आगे कुछ भी करेगा ना, वो जाके डॉक्टर लोग भी अभी इतना पाप क्यों करते हैं, मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, फिर उसको बाद में लगता है कि ये पाप करने का, कि ये करने का, कि वो करने का, क्योंकि ज्ञान नहीं ना उनको। फिर ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो जो पावरफुल नॉलेज है वो ऐसा यूज़ करेगा, वो साथ में वो नॉलेज भी देगा भगवान का, तो सब लोगों का पाप से भी उद्धार करेगा, रोग से केवल उद्धार नहीं करेगा, पाप से भी उद्धार करेगा। तो हमारा मेडिकल केयर तभी पूरा होता है, जब स्पिरिचुअल केयर देते हैं तो वो पूरा हो जाता है। तो हमारा कैंप करते हैं ना, अभी आप लोग भी कैंप करते हो, हमने भी 1986 से कैंप किए हैं, हजारों कैंप हमने किए हैं, अभी भी चल रहे हैं, हमारे हजारों गांव में कैंप चल रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं, दवाई देते हैं, उनको चेकअप करते हैं, पैथोलॉजी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भगवान का प्रसाद बांटते हैं, जो भगवान को भोग लगाया है, शाकाहारी अन्न है, उसको भगवान को भोग लगाया प्रेम से, घंटी बजाकर मंत्र बोलकर, वो खिचड़ी हो या कुछ हो ले जाते हैं और सब मरीजों को बांटते हैं, चाहे हलवा हो, कभी खिचड़ी है, कभी कुछ है, बांटते हैं। और उसके बाद में वहाँ पर एक साइड में मेडिकल कैंप हो रहा है, एक साइड पे हम लोग कीर्तन करते हैं, और जो लोग फ्री हो गए हैं वो आकर वहाँ बैठते हैं, उनके लिए कथा करते हैं, उनके लिए कीर्तन करते हैं, वहीं लोगों को माला दे देते हैं, कहते हैं माला जपो भगवान के नाम का, और पाप मत करो, मांसाहार मत करो, नशा करो मत करो, जुआ मत खेलो, झूठ मत बोलो, समझाते हैं उनको, और वो एक किताब दे देते हैं भगवान के बारे में समझाते हैं, और विनती करते हैं कि आप लोग बीमार क्यों पड़ रहे हो, पिछले पापों की वजह से बीमार पड़ रहे हो, बार बार बीमार पड़ने से बचना है तो भगवान के शरण ले लो। ऐसे हर कैंप में होता है, जहाँ पर भी जाए, 100 कैंप हो जाए, 1000 कैंप हो जाए, सब कैंप में ये तीन चीज़ चलती है, मेडिकल केयर, खाना, प्रसाद, प्रसाद वितरण, और भगवान के नाम का कीर्तन। जब हम लोग विद्यार्थी थे, बहुत अभी 30 साल हो गए उसको, तो कॉलेज में पढ़ते थे तभी से हम लोग ये करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, और जैसे हम लोग कर रहे हैं और भी बहुत लोग जुड़ रहे हैं। तो अस्पताल हमने खोला बाद में, तो अस्पताल में भी यही है, अभी देखो मैंने कल सजेशन दिया है उनको, आप लोग आए देखा ना हमारे अस्पताल में, आप किधर भी जाओगे ना, जीना में जाओगे, लिफ्ट में जाओगे, ये कमरा में जाओगे, OPD में जाओगे, वार्ड में जाओगे, सब जगह पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे सर चलते रहते हैं सब जगह पर। लिफ्ट में भी जाएंगे ना तो कान में आएगा, बहुत सुंदर। उससे क्या होता है, मरीज अपना एडमिट है उधर, लेकिन उसके कान में हमेशा गिर रहा है वो, और उसको 6 बार डाइट देते हैं उसको, है ना, डाइट तो देना ही है, अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारा हॉस्पिटल बड़ा है, उसके अंदर किचन है, उसको डाइट है, सब कुछ है, तो सारा डाइट जो है वो भगवान को भोग लगा के ही आता है, मांसाहार नहीं है, लहसुन प्याज अंडा चाय कॉफ़ी कुछ नहीं रहता उसके, जो भी बनता है शुद्ध शाकाहारी। भगवान का मंदिर जो है ना वो किचन के अंदर ही है, वो बड़ा मंदिर नीचे है, एक चलता फिरता मंदिर भी है, एक तीसरा किचन के अंदर है, तो जो भी खाना वहाँ बनना बनता है, बाहर आने के पहले वहाँ पर घंटी बजती है, तुलसी रखते हैं वहाँ पर, घंटी बजती है, जगन्नाथ भगवान को अर्पण करते हैं, और वहाँ से बाहर निकलता है, फिर वो ये पेशेंट को लिक्विड डाइट है, ये पेशेंट को लो सॉल्ट डाइट है, ये पेशेंट को डायबिटिक डाइट है, ये पेशेंट को फुल डाइट है, ये पेशेंट को जूस है, सॉफ्ट डाइट है, सब सारा डाइट जितना भी है 14 प्रकार का डाइट है, वो भोग लगा कर देना है। और समझो आप लोग भी, आपका पेशेंट एडमिट है, आप उसको मिलने को आए हो, अभी आप भी इधर रहते हो 24 घंटा, आपको भूख लगती है, तो आप तो पेशेंट नहीं हो, आपको तो चावल दाल सब कुछ खाना है, डोसा खाना है, इडली खाना है, वड़ा खाना है, सब कुछ परोठा खाना है, वो भी बनता है, और वो भी सब कुछ भगवान को भोग लगता है। और कैंटीन में खाना खाने जाओगे, अरे क्या है बनाए, गरम क्या है, बोला गरम साहब पराठा है, ठीक है पराठा दे दो, तो पराठा भी बना के भगवान को भोग लगा के आपको देगा वो। तो ये अस्पताल के अंदर जो भी खाएगा आदमी, पानी भी पिएगा, तो सब प्रसाद है भगवान का, आपको मालूम नहीं होगा या मालूम होगा, लेकिन जो भी खा रहे हैं वो सब प्रसाद होगा। और कीर्तन चल रहा है तो उसमें सत्संग होता है, मरीज लोग भी सत्संग में आके बैठ जाते हैं, कोई इधर ट्यूब लगा हुआ है, कोई IV लगा है, कोई इधर यूरिन का बैग है, कोई व्हील चेयर में है, तो लेक्चर में आ जाते हैं हमारे, आपने देखा होगा ना, बहुत सारा बैंडेज लगाया हुआ है ऐसे, उसको एक लड़की सिस्टर लेके आते हैं, बिठाती है उधर, और हमारी कथा चलती है, उसमें स्टाफ लोग भी आते हैं, पेशेंट भी आते हैं, इतना सुंदर है। काम तो करना ही आपको, आपको काम करना ही, आप डेंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, कोई नर्स है, कोई ऑप्टोमेट्रिस्ट है, कोई फार्मासिस्ट है, सबको अपना काम है, 8 घंटे की ड्यूटी है, सब कुछ चलते रहता है, फर्स्ट क्लास चलते रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ साथ में फेस्टिवल भी होता है, साथ साथ में लेक्चर भी होता है, कीर्तन होता है, नीचे मंदिर में मंदिर की पूजा होती है, लोग दर्शन करते हैं, रोज काम पे आते हैं ना, कार्ड पंच करते हैं ना अपना अटेंडेंस, सीधा मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, काम पे चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, जाते वक्त वापस कार्ड पंच करके भगवान को दर्शन करते हैं, घर चले जाते हैं। कार्तिक के महीने में हमारे हॉस्पिटल में दीपदान होता है, दीपदान मालूम है आपको, 30 दिन तक भगवान को दीपक अर्पण करते हैं, तो हमारे पेशेंट है, हमारे स्टाफ है, डॉक्टर है, सब मंदिर में आकर भगवान को दीपक अर्पण करते हैं। कार्तिक महीने में अगर आप एक दीपक घी वाला भगवान को, विष्णु को अर्पण करते हो, तो कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के पाप एक साथ नष्ट हो जाते हैं, और भगवान के लिए प्रेम भक्ति मन में पैदा होती है एक दीपक अर्पण करने से। तो हमारे हॉस्पिटल में तो आपको दीपक का खर्चा करने की जरूरत नहीं, हम लोग घी वाला दीपक, घी में भिगा के उसको निरंजन में रख के उसको जला के रेडीमेड हाथ में देते हैं, आपको खाली घुमाना है कुछ खर्चा नहीं है, रेडी लैम्प बने रहते हैं और उनके हाथ में देते हैं और पेशेंट खड़े ऐसा भगवान को घुमाते हैं बस अपनी भक्ति के साथ, बाकी सब कुछ हमारा। पेशेंट एडमिट है उसके अंदर 4 ट्यूब लगी हुई है, फिर भी हाथ में दीपक देते हैं और एक टेम्पल है हमारा चलता फिरता, वो पहुंच जाता है वार्ड के पास बेड के पास, दे देते हैं उनको, तो अपना पड़े पड़े वो भगवान को दीपक अर्पण करता है। तो ऐसा सुंदर वातावरण जो है, इससे क्या होता है ना, हमारा जो पेशा है ना डॉक्टरी का, नर्स का, ऑप्टोमेट्रिस्ट का, आंखों के डॉक्टर का, डेंटिस्ट का, तो हमारा पेशा जो है शुद्ध हो जाता है पूरा, हमारा काम शुद्ध हो जाता है, हमारा कर्म शुद्ध हो जाता है। पैसा तो कमाना है, हमको पैसा चाहिए शरीर चलाने के लिए, लेकिन हमारा पेशा जो है वो शुद्ध हो जाता है, उसमें जो पाप है, पाप का विचार है, सब खत्म हो जाता है, कोई गलत काम नहीं होगा उसके अंदर। जो भी आप धन कमाएंगे वो शुद्ध धन कमाएंगे, उसमें कोई चीटिंग नहीं है, खाली सेवा ही सेवा है, भगवान का प्रचार है, भगवान के नाम का प्रचार है, भगवान के नाम का जहाँ गुंजन चलता है वहाँ पर आप काम कर रहे हो, सब पवित्र है, हर चीज़ पवित्र है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे हॉस्पिटल से साल में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कभी कभी पांच बार भी हम लोग यात्रा निकालते हैं, हमारे पेशेंट, हमारे स्टाफ मेंबर, हमारे डॉक्टर लोग 200-300 संख्या में तीर्थ स्थान में जाते हैं। अभी इस बार हमारा तीर्थ यात्रा दिसंबर में द्वारका में है, तो 300 लोगों का नाम ऑलरेडी फुल हो गया है वो, तो हमारे पेशेंट, हमारे डॉक्टर, हमारे पेशेंट के रिश्तेदार, हमारे स्टाफ मेंबर सब मिलकर हम लोग जाते हैं और भगवान के धाम का दर्शन करते हैं। तो इसी भावना से हम लोग यहाँ पर भी आए हैं। आपके जो ट्रस्टी हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने हमको विनती किया है कि जैसे हमारा भक्ति वेदांत अस्पताल है वो तो बहुत बड़ा है, वो पहले छोटा था, उसको धीरे धीरे बढ़ाया हमने, और हमारे ऐसे 8 हॉस्पिटल हैं टोटल मिलकर, 8 है और अलग अलग जगह पर है, वृंदावन मथुरा में भी 2 हॉस्पिटल हैं हमारे। तो वैसे यहाँ पर भी आप करो, यहाँ पर भी भगवान की सेवा, मरीजों के साथ, मरीजों की सेवा साथ साथ भगवान का भी ज्ञान लोगों को मिले, स्टाफ लोगों को लिए भी आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, ऑन ड्यूटी सत्संग होगा, भगवान का नाम का कीर्तन लगाया जाएगा, प्रार्थना होगी, ये सब करने का उन्होंने विनती किया है। इसलिए हमारे ब्रज सुंदर प्रभु और मैं यहाँ पर आए हैं। अभी मैं कुछ महीने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और लंबे समय तक रहूँगा, और धीरे धीरे आपको वो सारा चीज़ हम लोग चालू करेंगे धीरे धीरे। आँखों का ऑपरेशन भी हमारे डॉक्टर आएंगे मुंबई से और कैंप करेंगे अच्छी तरह से, फेको भी कर सकते हैं आगे जाके, बहुत अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। आपका आपका लोगों का जो मूड है बहुत अच्छा है, हम लोग ऑलरेडी सेवा कर रहे हो, खाली उसको ज़रा भगवान का साइड जोड़ना है बस, तो आपका काम परफेक्ट हो जाएगा एकदम, आपका काम आपको भगवान तक पहुँचाएगा। ऐसा काम होना चाहिए कि काम ही आपको भगवान तक पहुँचाना चाहिए, काम ही भक्ति होना चाहिए, है ना। आपको तो डेंटिस्ट्री करना ही है, आपको तो फार्मेसी करना ही है, आपको तो पेशेंट की सहायता करनी है, आपको तो आँखों का चेकअप करना ही है, मरीजों को देखना ही है, वो तो बंद नहीं होगा, आपको करना ही है, वो काम ही आपका भक्ति होना चाहिए। जब भगवान से जोड़ दिया उसको तो वही भक्ति बन जाता है। चेंज क्या है, इधर चेंज होना चाहिए, है ना। पैसा सब कुछ कमाते हैं, एक आदमी पैसा कमाता है दारू पीता है, एक आदमी पैसा कमाता है भगवान की सेवा करता है, तो चेंज किस में है, काम तो सेम कर रहे हैं दोनों, चेंज इधर होना चाहिए। इधर चेंज होगा सब कुछ उद्धार ही उद्धार है। हम क्या बोलते हैं उसको, हृदय परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। तो हम लोगों को हृदय परिवर्तन होना चाहिए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बस इतना ही बताने के लिए मैं आया था आपको। मैं प्रभु जी को कहा कि जाने के पहले आप लोगों को मिलना चाहिए, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट जो विचार है हमारा, वो आपको समझ में आएगा तो आप लोग सब लोग खुश हो जाएंगे, काम करते करते खुश, आपकी चिंता मिट जाएगी, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, काम में ही आपको आनंद आएगा, संतुष्टि प्राप्त होगी। संतुष्टि ना बहुत बड़ी चीज़ है, लोग संतुष्ट नहीं है, तड़पते रहते लोग, ये चाहिए वो चाहिए, तो संतुष्टि कैसे प्राप्त करना है जीवन में, क्योंकि अगर आपके पास समझो मर्सिडीज गाड़ी नहीं है समझो, तो नहीं मिलेगी आपको, तो उसके लिए तड़पने से क्या होगा, है ना। अगर मेरे पास उतना पैसा नहीं है तो गाड़ी कैसे आएगी, वो नसीब में नहीं है तो कैसे आएगी, लेकिन हमको चाहिए, है ना। तो इस तरह से मन को संतुष्ट रखना है, ये सारा चीज़ हम लोग सीख सकते हैं, जहाँ पर भगवान ने रखा है संतुष्ट कैसे रहना है, उसमें आनंदी कैसे रहना है, कैसे लोगों की सेवा करना है, उसके अंदर खुश रहकर, ये एक रहस्य है, कला है, कला वो गुरुजी सिखाते हैं सबको, शिष्य को सिखाते हैं, हम लोग भी सीख सकते हैं उसको, है ना। भगवान के विषय में चर्चा करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। हमारा एक कल्चर है, बहुत सुंदर कल्चर है, तो मैं बहुत लोगों को लेके आऊँगा यहाँ पर, टर्न बाय टर्न लेके आऊँगा, उनको भी आप मिलेंगे और वो भी आपको देखेंगे, यहाँ पर आके सेवा करेंगे। तो कुछ लोगों को यहाँ से वहाँ ट्रेनिंग के लेके जाएंगे, जैसे पहले लेके गए थे, फिर वहाँ से कुछ लोग आके यहाँ पर काम करेंगे, तो एक अच्छा आदान प्रदान रहेगा। हाँ, और सब लोगों के लिए अच्छा कल्चर हम लोग यहाँ पर स्थापित करेंगे। हमारे यहाँ पर कपड़े कैसे पहनते हैं उसका भी एक कल्चर है, कैसे व्यवहार करते हैं उसका भी एक कल्चर है। तो जैसे लगता है ना, जैसे आप हॉस्पिटल में आएंगे ना, आपको लगेगा हॉस्पिटल में नहीं आए हैं, आपको लगेगा मंदिर में आए हैं, लेकिन है मरीज एडमिट है ऊपर, लेकिन जैसे आप अंदर आएंगे आपको लगेगा कि हॉस्पिटल नहीं है, ये मंदिर है, यहाँ पर मैं ठीक हो जाऊँगा जल्दी, यहाँ पर मेरा चीटिंग नहीं होगा, यहाँ पर भगवान की कृपा मिलेगी मुझे। कितने लोग मरीज बनकर आए, भक्त बनकर चले गए, आए थे टाइफाइड लेकर, फिर जाते वक्त भक्त बनकर चले गए, शराब छोड़ दिया, बीड़ी छोड़ दिया, गलत आदत छोड़ दिया, क्या हो गया, परिवर्तन है ना। सब लोगों को कुछ ना कुछ होते रहता है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि ये सब गलत बात है, नहीं करना चाहिए। तो कितने लोगों ने शराब छोड़ दिया, कितने लोगों ने बीड़ी छोड़ दिया, कितने लोग भक्त बन गए, कितने लोगों का डिवोर्स बच गया, इतने झगड़े थे घर में तो भी काउंसलिंग करके उनको समझा बुझा के शादी बचाई, परिवार को बचाया। शराब छोड़ दिया तो घर में पैसा आने लगा ना, बच्चों की फीस आने लगी, बच्चों को दूध मिलने लगा, बच्चों की किताबें आने लगी, बच्चे स्कूल जाने लगे, परिवार सुधर गया। तो केवल मेडिकल सेवा पर्याप्त नहीं है, मेडिकल्स के साथ में लोगों को ये भी ज्ञान देना चाहिए, उनका जीवन को बचाने के लिए, है ना, दुख से बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए उनको ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। और ये ऑलरेडी 30 साल से काम हो रहा है, जगह जगह पर हो रहा है, तो यहाँ पर भी होना चाहिए। हमारे अच्छे मित्र हैं आपके ट्रस्टी, उन्होंने हमारा हॉस्पिटल देखा है, हमारे कैंप में भी आए, उन्होंने कहा मेरा भी हॉस्पिटल एक उत्तरकाशी में है, वहाँ पर भी आप कुछ सेवा करो। उन्होंने कहा ठीक है, अरे भगवान की दया है तो गंगा जी के किनारे में जिसको सेवा करने का भाग्य मिलेगा तो कितनी बड़ी बात है वो, है ना। उन्होंने बड़े खुशी से, कल से मैं गंगा जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ अच्छी सेवा हो जाए तो आपको हम प्रसन्न कर सकें। कोई प्रश्न है किसी का, कोई क्वेश्चन है सर, कोई क्वेश्चन है आपका?
वो बात हम कर रहे थे, क्या होगा, टोटल जो जो मेन मेजर प्रॉब्लम